शांति, ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चों का लक्ष्य है बाप समान बनना, फरिश्ता बनना, संपन्न बनना, संपूर्ण बनना, ये लक्ष्य है। तो बाप समान बनने की सहज विधि बाबा हमें कहते हैं, फॉलो फादर। फॉलो फादर माना ब्रह्मा बाबा को हम हर कदम पर कदम रखकर चलें। जो ब्रह्मा बाबा ने संकल्प, बोल और कर्म किए, वैसे ही हमें भी करना है। यानी हमें नकल करनी है ब्रह्मा बाबा की, ऐसा बाबा ने हमें कहा। दुनिया में अगर कोई नकल करता है ना, तो उसको अच्छा नहीं मानते, लेकिन यहाँ तो बाबा हमें खुली छुट्टी देते हैं, पूरी नकल करो अच्छी तरह से। लेकिन वो कहते हैं ना, नकल में भी क्या चाहिए, अकल चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम उसमें चूक जाते हैं। जो हमें अपने में उसको समाना है, वो समा नहीं पाते हैं। तो संकल्प बाबा के समान है, माना सदा ही स्मृति स्वरूप रहें, ज्ञान के स्मृति स्वरूप रहें। बोल बाबा के समान हो, यानी जैसे बाबा ने सदा ही सबको मधुर बोल बोले, सुख देने वाले, हिम्मत बढ़ाने वाले, उमंग उत्साह देने वाले, सेवा के लायक बनाने वाले, कोई निर्बल है उसको बल देने वाले। बाबा के बोल सदा ही ऐसे रहे, जो हमारी दादियां सुनाती हैं, वरिष्ठ सुनाते हैं, जो बाबा से मिले। हम ये भी कह सकते हैं कि हम तो बाबा से नहीं मिले, तो हम कैसे बाबा को फॉलो करें, हमने तो बाबा को देखा नहीं। यहाँ कितने बैठे हैं जिन्होंने बाबा को देखा है? तीन चार। हाँ, ब्रह्मा बाबा को देखा है जिन्होंने, ब्रह्मा बाबा, तीन चार तो हाथ उठा रहे हैं, है ना? बाकी सब ने तो क्या हुआ, किसने नहीं? विजय मेन जी ने देखा और राधा जी ने नहीं देखा। अच्छा, तो एक ही है, मतलब एक ही लाडले सिकिल दे साकार बाबा की पालना लिए यहाँ बैठे। हमने भी नहीं ली, हम भी बाबा के जाने के बाद आए ना। तो हम कह सकते हैं ना कि भाई हमने तो बाबा को देखा ही नहीं, कैसे फॉलो करें, क्या किया बाबा ने, तो क्या कहेंगे, सही है गलत है? गलत है, क्योंकि हम जो भी बाबा के चरित्र सुनते हैं दादियों के द्वारा, हमने बाबा की जीवन कहानी पढ़ी भी है और उससे हमें समझ में आता है। और अव्यक्त बाप दादा ने भी समय प्रति समय मुरलियों में बहुत बार ब्रह्मा बाबा क्या थे क्या नहीं थे वो हमको समझाया है। तो उस अनुसार हम हमेशा बाबा को फॉलो कर सकते हैं। तो बोल कैसे थे बाबा के, तो क्या मेरे बोल वैसे हैं? फिर कर्म बाबा के, जो किए बाबा ने हमें करके दिखाए, प्रत्यक्ष प्रमाण जो बाबा ने दिया अपने कर्मों का, ऐसे ही मेरे भी कर्म हो। तो बाबा सदा आज्ञाकारी रहे, वफादार रहे, ईमानदार रहे। पांच कदम बाबा बताता है फॉलो फादर के। और सदा ही निश्चय बुद्धि विजयंती रहे और विश्व सेवाधारी बनकर रहे। ये पांच विशेषताएं थी ब्रह्मा बाबा की, जो विशेष थी, और भी विशेषताएं रही। सबसे पहले बाबा की समर्पण बुद्धि थी। जिस घड़ी, जिस दिन ये निश्चय हो गया कि शिव बाबा आया है नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना करने के लिए, उस घड़ी ही बाबा ने तन मन धन समर्पण किया। तन दिया शिव बाबा के लिए, मन को मनमना भाव बनाया जो बाबा की श्रीमत थी, और धन को भी बिना भविष्य की चिंता किए पूरा का पूरा समर्पित किया। अपने लिए बाबा ने एक रुपया भी नहीं रखा। सबको मालूम है माताओं बहनों का ट्रस्ट बनाया बाबा ने, और उस ट्रस्ट के नाम पैसा कर दिया, अपने नाम नहीं, अपने बेटों के नाम भी नहीं, जितना भी धन था वो उस ट्रस्ट में गया और बाबा भी उनसे लेकर के यूज करते थे पैसा। और जबकि उस समय सिर्फ शुरुआत थी, यज्ञ की स्थापना थी, भविष्य में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है कुछ क्लियर नहीं था, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी हिम्मत कहेंगे, हिम्मत का कदम। आज तो हम 100 बार सोचते हैं, यथा योग्य यथा शक्ति करते हैं, पूरा तो करने के लिए बाबा कहता ही नहीं है, लेकिन यथा योग्य यथा शक्ति करते हैं उसमें भी 100 बार सोचते हैं, यानी फॉलो फादर करने की बात जहां तक आती है। तो बाबा को पता था कि ये देना नहीं है लेकिन पदम गुना लेना है। तो नंबर 1 समर्पण किया तो नंबर 1 भाग्य के अधिकारी भी बने। तो समर्पित बुद्धि, पूरा तरह से मैंपन और मेरेपन की बुद्धि बाबा ने समर्पित की, है ना। और दूसरा हमने देखा बाबा में कि जो सहनशीलता का गुण था वो सदा ही रहा। शुरू से सहन करना पड़ा समाज से, फिर अपने ब्राह्मण परिवार से ही कितने विघ्न आए यज्ञ में। बाबा का जो बिजनेस था, हीरे ज्वारात का जो बिजनेस था, उसमें बहुत सम्मान मिलता है और पूरे रॉयल फैमिली से बाबा का बिजनेस था, तो बहुत प्रतिष्ठित थे ब्रह्मा बाबा। समाज में कभी एक शब्द नहीं सुना उन्होंने, लेकिन जैसे ही शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया सबसे पहले गालियां मिलनी किसको शुरू हुई। तो किसी को भी संशय आ सकता है ना, देखो हम कुछ नहीं थे और भगवान ने हमें इतना ऊंचा बना दिया, ये तो प्राप्ति हो गई, लेकिन हम सब कुछ थे और कहां पहुंच गए, मतलब आप समझ रहे हैं उल्टा हुआ ब्रह्मा बाबा के साथ, है ना। उल्टा हुआ माना बाबा के पास कोई कमी नहीं थी, कोई भौतिक संपत्ति की कमी नहीं, कोई साधन की कमी नहीं। उस जमाने में बाबा के पास कार हुआ करती थी जो दुर्लभ वस्तु थी, आज के जमाने में तो सबके पास कार होती है। फिर घर था बाबा के पास अपना, इतना संपन्न परिवार था, कोई कमी नहीं, जो सर्व भाग्य होने चाहिए अंतिम जन्म में वो सभी भाग्य थे उनके पास। और जैसे ही शिव बाबा मिला सबसे पहले तो अपमान होना शुरू हो गया, क्या क्या लांछन कलंक उनके ऊपर लगाए गए सब जानते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। 16,000 रानियां हैं, वो अखबार में भी वो छपा, मतलब सोचने की बात है कि कोई भी संशय में आ सकता है कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है। पर निश्चय बुद्धि जो बाबा से अनुभव हुए थे वो इतने पक्के थे वो अनुभव कि सदा ही कभी भी बाबा को अंश मात्र भी बाबा के कार्य में संशय नहीं आया, और इसीलिए अच्छल अटल अडोल रहे, कभी भी हिले नहीं, यहां तक कि जान से भी मारने आ गए लोग। सुनाते हैं ना हिस्ट्री में, हम सुनते हैं कि किसी ने जान लेने की भी कोशिश की तो उसको साक्षात्कार हो गया, और जब साक्षात्कार हुआ क्योंकि सिख धर्म को मानने वाला था वो, और उसको गुरु नानक देव जी का साक्षात्कार हो गया तो उसकी जो मारने के लिए जो चाकू लेकर के आया था वो उसके हाथ में रह गया। अब ये सब हमारे सामने भी आता है, उतना नहीं जितना ब्रह्मा बाबा के सामने आया, उसका तो 5% ही आता होगा हमारे सामने। हम सब ब्राह्मणों को ये विघ्न अपमान झेलने पड़ते हैं, जो भी हमारा सब लौकिक परिवार है सब ज्ञान में नहीं चलता है, या और भी जहां समाज में हम काम करते हैं व्यवहार में आते हैं। ब्रह्मा कुमारी का नाम सुनते ही 2 बातें आपको जरूर ऐसी सुना देंगे जो आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, तो लेकिन फिर भी क्या हमारी स्थिति वैसी रहती है जैसे ब्रह्मा बाबा की रही? क्या हमारा निश्चय इतना पक्का है कि हम जरा भी नहीं हिलते? चेक कर सकते हैं अपने आप को कितना हम फॉलो फादर करते हैं इसमें। फिर बाबा जब पुरुषार्थ करते थे तो सदा बाबा ने जो भी कर्म किया, सब कर्म किए लेकिन स्थिति सदा श्रेष्ठ रही। साधारण कर्म भी किए यज्ञ में, हम मम्मा बाबा का सुनते हैं। साधारण कर्म माना गोबर के गोले बनते थे उस जमाने में, गैस तो नहीं होती थी आज के जमाने में, तो अब वो समय नहीं रहा। तो बाबा बच्चों के साथ सब्जी भी काटेंगे, अनाज भी साफ करेंगे, गोबर के गोले भी बनाएंगे, लेकिन स्थिति कभी भी साधारण नहीं रहेगी। स्थिति सदा ही श्रेष्ठ रही और इस कारण कभी भी किसी भी अवस्था में कोई आत्मा बाबा के सामने आई, उसे अनुभव हुआ हमेशा बाबा से। वो एक बार सुनाते हैं कि एक बार एक ऑफिसर आए, यहीं सिरोही के ऑफिसर थे, बाबा से मिलना था उनको, और बाबा वही बच्चों के साथ बैठ करके सेवा, यज्ञ सेवा का काम कर रहे थे, कोई साधारण सा काम कर रहे थे। तो जिस बहन की ड्यूटी थी वो बाबा को बुलाने आई, क्योंकि जो मीटिंग रूम होता है रिसेप्शन, वो अलग बना हुआ था। तो उसने कहा कि बाबा वो अफसर आपसे मिलने आए हैं, आप चलो। बाबा ने कहा कि उस बच्चे उनको यहीं ले आओ, बच्चे को यहीं ले आओ, बाबा सबको ही बच्चे बच्चे कहते थे, बच्चे को यहीं ले आओ। तो वो सोचने लगी कि बाबा को कैसे कहे कि बाबा आप ये क्या कर रहे हैं, और वो आकर क्या देखेंगे कि इनके, वो तो गुरु समझते हैं ना कि इनके गुरु हैं, ये क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर चुप रही, फिर बाबा समझ गए उसके मन की स्थिति को। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम सोचो नहीं, तुम उसको ले आओ यहाँ, बाबा वहां नहीं जाएगा। वो कहा ठीक है, बाबा की आज्ञा है। तो लेकर के आ गई, और जैसे ही बाबा ने दृष्टि दी उनको, और उसको अब साक्षात्कार हो गया बाबा से, वो फरिश्ते रूप का साक्षात्कार हुआ ऐसे बताते हैं। और बाद में फिर वो ज्ञान में भी चले। तो देखो, भले ही बाबा कोई भी सेवा कर रहे थे, लेकिन बाबा की स्थिति बहुत ऊंची और श्रेष्ठ थी। यही बाबा हमसे चाहते हैं कि हम कर्म योगी बनकर कर्म करें। जो भी कर्म कर रहे हैं, अब यज्ञ सेवा में भी हम सभी प्रकार की सेवा करते हैं, जो सेवा हमको मिलती है वो सेवा हम करते हैं। चाहे सेंटर पर कार्यक्रम होते हैं तो भी जो सेवा जिसको जिसकी विशेषता अनुसार मिलती है, वो सब उस प्रकार की सेवा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि साधारण सेवा कर रहे हैं तो स्थिति भी साधारण हो जाए, और भाषण करने की सेवा कर रहे हैं तो ही हमारी स्थिति अच्छी होगी, ये नहीं। तो सदा ही वो ध्यान देना है अपना। फिर बाबा सदा ही वफादार रहे, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा, जो कहा वो बाबा की धारणा थी। कभी भी किसी व्यक्ति किसी साधन की तरफ बाबा आकर्षित नहीं हुए। बाबा हमेशा कहता है बेहद की वैराग वृत्ति, है ना। वैराग वृत्ति माना किसी में भी बुद्धि न जाए। बाबा की बुद्धि जाने का तो प्रश्न नहीं उठता था, क्योंकि जैसे बताया पहले से ही संपन्नता का अनुभव वो कर चुके थे। और इसीलिए जब यज्ञ में रहे, यज्ञ में जो भी सुविधाओं का विस्तार हुआ, काफी विस्तार हुआ, लेकिन बाबा ने कभी भी उसे स्वीकार नहीं किया। स्वयं साधारण ही रहे हमेशा, हमेशा ही बाबा का कमरा वही रहा। बाबा की झोपड़ी जो थी वो बहुत ही साधारण थी। बच्चों ने बहुत कहा कि बाबा अब नया मकान बन गया है, वो इसको एरोप्लेन कहते हैं, जो सामने लाइट हाउस है अभी, और फिर बाद में ट्रेनिंग सेंटर बना, ये छोटे हॉल वाला पोर्शन बना। बच्चों को बाबा ने वहां रखा, लेकिन खुद के लिए कभी भी स्वीकार नहीं किया। और वो जो कमरा है अभी बाबा का, वो बहुत छोटा था, आधा था वो। अभी तो वो उसको बाद में, क्योंकि बाबा का कमरा बनाया, बच्चों को बैठना था, तो उसे फिर बड़ा किया उसे। तो इतने छोटे से कमरे में बाबा रहते थे, कहां इतने बड़े बड़े मकानों में रहने वाले। तो इसे कहेंगे बेहद की वैराग वृत्ति। और हमारी भावना क्या होती है, फॉलो फादर करना है ना। तो फॉलो फादर मतलब हमारी भावना क्या होती है, छोटा है घर, अभी और बड़ा होना चाहिए, या फिर और भी जो हमारे सुख के साधन हैं, उन सुख के साधनों के बारे में भी हम विस्तार करने का सोचते हैं। लेकिन अब घर जाना है, अब वापस जाने का समय है, अब कर्मातीत बनने का समय है। तो साधन सिर्फ सेवा के प्रति है। बाबा ने भी कभी स्व के प्रति नहीं, सेवा के प्रति ही उन्हें यूज किया। साधन यूज करने के लिए बाबा हमें कभी मना नहीं करते हैं, लेकिन किस वृत्ति से यूज करना है ये बाबा ने हमें सिखाया। तो वैराग वृत्ति, अनासक्त वृत्ति हो, जैसे शाम को राजू भाई भी क्लास करा रहे थे तो उन्होंने भी काफी इन बातों को अंडरलाइन किया कि साधन हमारी साधना को भंग नहीं करे, हमारी बुद्धि को हलचल में नहीं लेकर के आए। आजकल के साधन हम कैसे प्रयोग करने लगते हैं, पूरी तरह से बुद्धि जो है वो उसी में चली जाती है, और जब बुद्धि उसमें चली जाती है तो बाबा से योग हमारा टूट जाता है, और बाबा से योग टूटते ही आत्मा खाली होती है, और खाली होते ही फिर माया को रास्ता मिल जाता है, माया अपना चांस लेती है, और फिर हम कहते हैं हमें अनुभव नहीं होता, योग करते हैं लेकिन स्थिति नहीं बनती। हाँ, फिर हम कहते हैं कि अब पुरुषार्थ जो है वो बहुत ढीला हो गया है, पुरुषार्थ ठीक नहीं चल पा रहा है, बहुत मेहनत करते हैं फिर भी प्राप्ति नहीं होती है, तो माया ने अपना चांस इस रूप में लिया। तो ये हमें समय प्रति समय ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, हमारे जैसे ही थे ना बाबा भी, तो और अधिक आयु के थे। बाबा ने जब पुरुषार्थ शुरू किया बाबा 60 साल की आयु के थे ना? अगर हम बहुत अधिक आयु के हैं और हमें शरीर में कोई ना कोई व्याधि है, होता ही है, क्योंकि एक आयु का प्रभाव होता है शरीर के ऊपर, तो अगर हमारी लाइफस्टाइल हमने शुरू से बिल्कुल स्वस्थ नहीं रखी है, जैसा भोजन खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए या जो भी, तो कोई ना कोई रोग जरूर शरीर में होते हैं। तो फिर हम उसका एक्सक्यूज देते ना, मुझे ये था ना इसलिए मैंने ये पुरुषार्थ नहीं किया, या ये हुआ, ये दर्द था, वो दर्द था। ब्रह्मा बाबा को देखा कभी बहाना देते हुए? आयु तो बाबा की भी अधिक थी, बाबा तो 2:30 बजे उठ करके नियमित बच्चों के लिए मुरली लिखते थे। मुरली लिखने का समय था बाबा का रात को 2:30 बजे उठ करके। अमृत वेले का योग फिर बाबा का नेचुरल हो जाता था। उस समय अमृत वेले योग करने का नियम नहीं था, लेकिन मम्मा बाबा अपने पुरुषार्थ के लिए सुबह जल्दी उठते थे। सभी बच्चों के लिए वो नियम नहीं था, ये नियम शायद बाद में बाबा के अव्यक्त होने के बाद। हाँ, मतलब बाद में ये नियम बना, शुरू से नहीं था अमृत वेले उठने का नियम, लेकिन मम्मा बाबा ने कभी भी अपने पुरुषार्थ में अलबेलापन नहीं आने दिया। मतलब हमेशा ही वो एक्यूरेट रहे, अलर्ट रहे और जिम्मेवार रहे, और हमेशा ये सोचा जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख दूसरे करेंगे। और ऐसा होता भी है, अगर मम्मा बाबा थोड़ा अलबेलापन ले आएंगे तो बच्चे तो पहले अलबेले हो जाएंगे। तो हमें भी कोई बहाना अपने पुरुषार्थ के लिए नहीं देना, और खासकर सबसे बड़ा बहाना यही होता है, या फिर कोई ना कोई हमारे घर की कोई परिस्थिति होती है समझो। तो आज इतने साधन हैं कि हम उन साधनों का प्रयोग करके भी मुरली सुनना या जो भी अपना योग करना, हम घर में भी हैं तो भी हम कर सकते हैं। तो अपनी दिनचर्या को हमें मिस नहीं करना है। अमृत वेले से रात तक जो हमारी दिनचर्या बनी हुई है वो है बाबा के आज्ञाकारी बनना। शिव बाबा की आज्ञा मिली हुई ना हमको कि हमें अमृत वेले किस विधि से करना है। अमृत वेले की भी विधि है, कौन से संकल्प हमारे अमृत वेले होने चाहिए, फिर मुरली भी हमें किस विधि से सुननी है वो विधि भी हमें मिली हुई है। हर कर्म की श्रीमत मिली हुई है और उस श्रीमत प्रमाण हम चलते हैं। मानो दिन भर में भी हमें जो कार्य व्यवहार करना है उस कार्य व्यवहार में मैं निमित्त हूँ, करण करावन हार बाबा हैं, घर परिवार में हम रहते हैं तो हम ट्रस्टी हैं, और कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ बाबा का है। बाबा हमेशा कहता है तेरा समझ के चलो, मेरी जिम्मेवारी है नहीं, मैं कर रहा हूं नहीं, किसकी जिम्मेवारी है? बाबा की जिम्मेवारी, बोझ सदा बाबा के ऊपर, खुद हल्के रहो, डबल लाइट रह करके अपने कर्म करने हैं, फिर ब्रह्मा भोजन ही खाना है, फिर रात को सोने से पहले अपना चार्ट भी देना है। ये हम जितना हम आज्ञाकारी बनकर चलते हैं सुबह से रात तक, बाबा की दुआएं हमें मिलती हैं। दुनिया में भी देखो, कोई किसी की आज्ञा पर चलता है तो दुआएं पाता है, नहीं पाता? मिलता है ना, दुआएं मिलती है। माँ बाप के भी जो बच्चे आज्ञाकारी होते हैं वो स्वतः ही उनकी दुआएं उनको मिलती हैं। कहने की बात नहीं होती, दिल से वो दुआएं जो हैं वो आत्मा को मिलती हैं। तो बाबा की श्रीमत पर भी हम चले, अपने पिता की श्रीमत पर हम चल रहे हैं, जो हमने मम्मा बाबा को देखा। सदा हर बात में हाँ जी, कभी ना जी तो था ही नहीं। और हमें भी क्या श्रीमत दी जाती है सेवा में, कभी भी हमें कहा जाए तो हमें क्या करना है, हाँ जी करना है या ना जी करना है? सदा हाँ जी। तो बाबा ने कहा जो हाजी करने वाले बच्चे हैं उनके आगे हुजूर सदा हाजिर है, और जो नाजी करने वाले बच्चे हैं फिर वो बाबा की उन दुआओं से वंचित हो जाते हैं। और ऐसे ही बाबा ने सदा ही अशरीरी बनने का और फरिश्ता स्थिति बनाने का पुरुषार्थ किया, विशेष पुरुषार्थ किया। ये तो सब सुनते ही हैं क्लासेस में कि बाबा को पहले ये नहीं मालूम था कि मेरा संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में है, फरिश्ता स्वरूप मेरा जो है वो सूक्ष्म वतन में है। तो एक बार संदेशियों का पाठ बहुत चलता था साकार बाबा के समय पर, बात बात में संदेशी को ऊपर भेजा जाता था और फिर ऊपर से बाबा प्रोग्राम देता था, उस अनुसार ही योग के प्रोग्राम चलते थे। जैसे हम भट्टियां करते हैं आजकल, बाबा के समय में जब शिव बाबा के द्वारा ये प्रोग्राम आता था तो 7-7 दिन की लगातार भट्टी चलती थी, और फिर उस भट्टी में भी सभी को कैसे खाना है, क्या खाना है, और बिल्कुल भी जिस कमरे में भट्टी चल रही है, जैसे आप सबके लिए मेडिटेशन हॉल है, आप लोग तो फिर भी खाना खाने के लिए उधर हॉल में जाते हो, लेकिन दादियां सुनाती हैं कि खाना भी वहीं आता था, खाने के लिए भी बाहर नहीं जाना। 7 दिन पूरी तरह से देह की दुनिया से, देह के संबंधों से न्यारे, बिल्कुल डिटैच, दुनिया का कोई दिखना नहीं चाहिए, कोई याद नहीं आना चाहिए। कई बार सिंगल को भी भट्टी में बिठाते थे, एक एक जने के लिए भी वो प्रोग्राम आता था। तो ये संदेशियों के माध्यम से वो पार्ट उस समय बहुत चलता था। तो एक बार ऐसे ही संदेशी ने बाबा को आकर के कहा कि बाबा को, मम्मा को सुना दी थी संदेशियां, मम्मा को सुनाया कि मैंने बाबा को वतन में देखा, लेकिन जो ऊपर वाला बाबा था वो इन बाबा से ज्यादा लाइट वाला है। तो मम्मा ने पूछा कि बाबा में वो लाइट नहीं है? तो बोला नहीं, जो बाबा यहाँ है और ऊपर वाला बाबा अलग लगता था, ये मतलब है वही लेकिन वो अलग लगता था और ये बाबा अलग है। तो मम्मा ने बाबा को सुनाया तो बाबा को भी आश्चर्य हुआ कि ऊपर कौन सा बाबा देखा, मैं तो नीचे हूँ। फिर ऑलमाइटी बाबा कहते थे शिव बाबा को कि ऑलमाइटी बाबा से पूछवाओ, इसको दोबारा भेजो और ऑलमाइटी बाबा से पूछवाओ कि जो ऊपर में बाबा है वो अलग है, और अगर मैं ही हूं तो फिर उसमें और मुझ में क्या फर्क है, और अगर मुझे वो बनना है तो कैसे बनना है। तो वो गई संदेशी ऊपर और फिर बाबा ने उसको कहा कि ये संपूर्ण ब्रह्मा है, जो सूक्ष्म वतन में है वो संपूर्ण ब्रह्मा है, नीचे जो है वो पुरुषार्थी ब्रह्मा है, और पुरुषार्थी ब्रह्मा को तपस्या करके संपूर्ण ब्रह्मा फरिश्ता बनना है, तो वो पुरुषार्थ उनका अभी बाकी है, इसीलिए बाबा ने दिखाया। उसने आकर के सुनाया वो संदेश और फिर उस मम्मा ने बाबा को कहा, तब बाबा को इतनी धुन लगी कि मेरे में और संपूर्ण ब्रह्मा में, मतलब मुझे वो संपूर्ण बनना है, तो वो अंतर मिट जाए। और वो बाबा ने फिर अशरीरी स्थिति का अभ्यास और वो फरिश्ता स्थिति का अभ्यास बहुत अधिक किया, और उन दिनों के अनुभव हमारी दादियां और वो सुनाते हैं कि बाबा के सामने कोई भी जाते थे अशरीरी स्थिति का अनुभव करते थे। मतलब वो कई बार सोच के जाते थे कि हम बाबा से ये बात करेंगे, बाबा से ये पूछेंगे, लेकिन जो बाबा की उनको दृष्टि मिलती थी वो दृष्टि ही देह से न्यारा कर देती थी उनको, अशरीरी स्थिति के अनुभव में ले जाती थी और फिर उन्हें पूछने की जरूरत ही नहीं रहती थी, भूल ही जाते थे वो क्या क्या पूछने के लिए आए थे। और वो अनुभव उनको भूलता नहीं था। बहुतों को उस अनुभव ने बाबा का बनाया, बाबा में निश्चय पक्का किया। ऐसे मेरा अपना अनुभव भी ऐसा है, मैं जब पहली बार बाबा को मिली 83 में मैं आई थी बाबा से मिलने के लिए यहाँ, तब ओम शांति भवन बन चुका था। उस समय मैंने जस्ट कोर्स किया था, मैं कॉलेज में आई थी और मैंने कोर्स किया था, मुझे ज्ञान की कुछ गहराई नहीं थी और बहन मुझे ले आई थी बाबा से मिलने के लिए। मुरली भी मैं ज्यादा नहीं सुनती थी तो मुझे बाबा के शब्दों का भी इतना नहीं मालूम था जो बाबा भाषा प्रयोग करते हैं। हम सब जानते हैं जब हम नए नए ज्ञान में चलते हैं तो हमको बहुत समय तक मुरली ठीक से समझ में नहीं आती क्योंकि बाबा की भाषा अलग होती है। 2-3 महीने लगातार सुनते रहो तो फिर मुरली ठीक तरह से समझ में आने लगती है। तो मैं उस स्थिति में थी कि मुझे अभी तक मुरली भी ठीक से समझ में नहीं आती थी। तो मैं बाबा से मिलने आई और मैं साइंस की स्टूडेंट थी, मैंने कोर्स किया तो मेरे मन में कई सवाल भी थे लेकिन मुझे बहुत बोलने का स्वभाव नहीं था, ज्यादा मैं बातचीत नहीं करती थी तो मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा। मैंने सोचा ठीक है, उत्तर मिलेगा नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, ज्ञान तो अच्छा है, मतलब ऐसे एक अपनी धारणा बना ली मैंने। और फिर मैं जब आई यहाँ तो उस समय बहुत सामने, जैसे आप लोग नजदीक बैठे हैं ओम शांति भवन में, स्टेज ऐसी ही है। डायमंड हॉल में तो हम बहुत नजदीक से नहीं मिलते बाबा से, लेकिन ओम शांति भवन में बहुत नजदीक से मिलते थे। तो ऐसे ही हम बैठे थे और बाबा दृष्टि देते हैं, जैसे आह्वान होता है बाबा की दृष्टि मिलती है। तो बाबा ने जैसे ही दृष्टि दी तो मैं एकदम लाइट लाइट हो गई बिल्कुल, और बाबा भी मुझे लाइट दिखाई दे। मुझे लगा ये मुझे क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था ऐसे कुछ लाइट होता है, वो मैंने सुना ही नहीं था। मैंने सोचा मैं लगातार देख रही हूँ ना बाबा को, शायद इसलिए मेरी आंखों को कुछ हो गया। फिर बाबा ने दृष्टि हटाई तो सब कुछ नॉर्मल एकदम। तो मैंने सोचा मैंने बाबा से दृष्टि नहीं ली, ऐसा हुआ, अब नेक्स्ट टाइम जब बाबा दृष्टि देंगे तो मैं बहुत ध्यान रखूंगी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए अभी। फिर दूसरी बार बाबा 2-3 राउंड में दृष्टि देते हैं और खासकर सामने वालों को तो कई बार मिलती है। तो बाबा ने जब दूसरी बार दृष्टि दी तो फिर भी ऐसा ही हो गया, एकदम लाइट लाइट हो गया सब। फिर मैंने सोचा ये बाबा की दृष्टि से ही कुछ हो रहा है, अभी तो मैंने पूरा ध्यान से मतलब कोशिश की थी कि मैं बाबा से दृष्टि लूंगी, लेकिन फिर भी मुझे वो अनुभव हो रहा है। लेकिन बहुत अच्छा भी लग रहा था, बहुत हल्का एकदम आनंद, माना कुछ अलग ही अनुभव हो रहा था जो मुझे पहले कभी जिंदगी में नहीं हुआ। फिर मैंने बाद में मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन जी से पूछ लूंगी, पर ये बहुत अच्छा बाबा ने मुझे अनुभव कराया। और फिर मुरली में भी जो बाबा ने मुरली चलाई, जो मैं प्रश्न सोच रही थी जो मैंने किसी से नहीं कहे थे, आपको पता है बाबा कैसे उत्तर देते हैं हमको, पूरे उत्तर मुझे मिल गए उसमें, मुरली के सारे मेरे प्रश्नों के सारे उत्तर मुरली में मिल गए। तो मुझे निश्चय भी हुआ क्योंकि उस समय मैं निश्चय के प्रोसेस में थी, पूरी तरह से 100% मुझे निश्चय नहीं था। पर जैसे ही बाबा ने उत्तर दिए तो मुझे लगा कि हाँ ये तो भगवान है, ये बिना कहे मेरे मन की सारी बात उन्होंने समझ ली, सारे उत्तर दे दिए, एक स्टेप आगे। फिर जब मैं स्टेज पे चढ़ी, उस समय पर्सनल मिलते थे सब, आजकल तो पर्सनल मीटिंग नहीं होती ना, कुछ ही अपने दादियां ही होते हैं स्टेज पर, लेकिन उस समय में जो भी पार्टी वाले आते थे एक एक जना स्टेज पर जाकर बाबा से 5-5 मिनट मिलता था। तो हमको भी वो चांस मिला, तो मैंने सोचा था कि मैं बाबा से कुछ बात करूंगी, पर वही होता है वहां जाके सब भूल जाते हैं। तो बाबा की वो दृष्टि ही इतनी पावरफुल होती है, तो वो एक तो मुझे लगा कि बहुत बड़ा कोई चुंबक जैसे नहीं होता है, कैसे करंट होती है एकदम, ऐसा मैंने फील किया बाबा से, बाबा की दृष्टि से। और बहुत बहुत ही स्नेह, मतलब शायद अपनी जिंदगी में उस समय तक ऐसा स्नेह मैंने किसी से भी अपने संबंध में अनुभव नहीं किया, मेरे माता पिता से भी नहीं। और एक टचिंग और मुझे आई बाबा से, जो उस समय आई कि मैंने शायद उनको बहुत ढूंढा है, पूर्व जन्मों में ढूंढा होगा, इस जन्म में तो नहीं ढूंढा भगवान को, लेकिन ऐसा मुझे फील हुआ कि मैंने इनको बहुत ढूंढा है और अब वो मेरे सामने हैं। और ये कुछ फीलिंग्स ऐसी थी कि जो मेरी लाइफ के टर्निंग पॉइंट हो गए। माना हम सोच अब तक कहां सोच रहे थे और फिर सोचने की दिशा एकदम ही बदल जाए, जैसे वो भगवान की शक्ति ने काम किया। पहले मैं बहुत दुनिया वालों जैसे ही सोच रही थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन के लोग क्या करते हैं, कितना, हालांकि सेवा भाव था इसीलिए मैंने ये लाइन चुनी, लेकिन फिर सपने उसी तरह के थे कि डॉक्टर बनना है, फिर कैसा बनना है, फिर कैसे नौकरी करनी है, इस तरह से। बाबा से ये अनुभव हुए और पूरी तरह से वो लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो गई। फिर दूसरी बात जो बाबा ने कही उस समय, जो वरदान कहते थे, बाबा ने मुझसे पूछा कुमारी माना क्या, मुझे नहीं मालूम था कुमारी माना क्या, तो मैं चुप रही। बाबा ने कहा 100 ब्राह्मण से उत्तम श्रेष्ठ। मुझे कुछ समझ नहीं आया कौन ब्राह्मण और कौन श्रेष्ठ, मतलब मुझे वो भाषा ही नहीं आती थी उस समय तक, तो मैंने कहा पता नहीं बाबा ने क्या कह दिया। तो कहने का मतलब मैं अशरीरी स्थिति का अनुभव बता रही थी आपको कि बाबा ने कैसे वो अनुभव कराया। वो तो बाबा ने जो मुझे कहा, मुझे उस समय कुछ भी समझ में नहीं आया, और भी 2-3 बातें बाबा ने कही। तो वो बहन ने बोला कि भगवान आपके भविष्य को देख, तीनों कालों को जानता है, तो वो आपके भविष्य को देखकर कह रहा है, आप तो अपने वर्तमान को देख रही हो, इसलिए जो बाबा ने कहा उसे आप दिन में एक बार याद कर लो, ये भगवान का वरदान है आपके लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार तो मैं याद कर सकती हूँ। तो वो मेरा वो अनुभव रहा। तो ये पुरुषार्थ हमें भी करना है। कहने का भाव ये है, फॉलो फादर करना माना अशरीरी स्थिति का, निराकारी स्थिति का, अव्यक्त स्थिति का, ये लगभग मिलती जुलती स्थितियां हैं। और योग में हम अनुभव करते हैं, लेकिन बाबा कहता है अटेंशन रहे कर्म करते हुए भी, हम खुद भी डबल लाइट रहें, फरिश्ता स्थिति में रहें, वो भी अशरीरी स्थिति है, और दूसरों को भी हम फरिश्ता रूप में ही देखें, आत्मिक रूप में देखें, स्वयं को भी आत्मा समझकर अपना कर्म व्यवहार करें। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करें, हर मुरली में 10 बार आता होगा देही अभिमानी बनो। मैं समझती हूँ कोई दिन की मुरली ऐसी नहीं होती, लेकिन फिर भी कितना होते हैं हम, कितना होते हैं मुरली सुनते समय थोड़ा, योग के समय थोड़ा, सारा दिन कर्म कॉन्शियस और या फिर बॉडी कॉन्शियस। अगर अगर सोल कॉन्शियस नहीं है तो क्या है, बॉडी कॉन्शियस है। और बॉडी कॉन्शियस होते ही हमारे पुराने संस्कार इमर्ज होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान विकारों की जड़ है, वो बाबा ने हमें समझाया है। और सर्वंश त्यागी बनना माना, जैसे ब्रह्मा बाबा सर्वंश त्यागी बने, उसमें अपने पुराने संस्कार स्वभाव का भी पूर्ण त्याग किया बाबा ने। जो बाबा के संस्कार हैं वो मेरे संस्कार हैं, जो मेरे पुराने संस्कार हैं वो माया के संस्कार हैं, वो रावण के संस्कार हैं, वो हमारे आदि अनादि संस्कार हैं ही नहीं। तो क्या मेरे संस्कार अभी भी आ जाते हैं, ये फिर ये महीन पुरुषार्थ है, महीन चेकिंग है अपनी, कि वो अंश वंश जरूर कहीं ना कहीं अपना अपना असर दिखाते रहते हैं। फिर बाबा ने लास्ट दिन तक भी, जैसे कहा कि सेवा में अपने सब खजाने बाबा ने सफल किए, तो अंतिम दिन भी बाबा ने बच्चों के लिए मुरली चलाई। जैसे हमने कहा अलबेलापन नहीं रहा, बाबा ने कभी बहानेबाजी, हाँ जैसे हम बच्चे करते हैं, बच्चे का रूप ले लेते हैं कि वो हमारे पिता हैं और हम बच्चे हैं, तो बच्चे कैसे करते हैं, लेकिन हमें बाबा के समान संपूर्ण बनना है, निराकारी निर्विकारी और निरअहंकारी बनना है, जो बाबा की अंतिम शिक्षा रही, तो फिर उस रूप में मुरली से सदा प्यार, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, लास्ट तक भी बाबा ने मुरली चलाई बच्चों के लिए और उसके बाद विदाई ली। और शरीर भी कैसे छोड़ा, बिल्कुल कर्मातीत स्थिति माना बैठे बैठे बाबा ने बहुत सहज देह का त्याग किया। सबको मालूम है वो स्टोरी, कैसे दादी का हाथ हाथ में लिया बाबा ने और जैसे वो हाथ फिर ढीला पड़ गया, माना अपनी पावर्स बाबा ने दादी को विल की। तो यहाँ पर बच्चों से बहुत स्नेह था, ऐसे नहीं बाबा का स्नेह नहीं था, और जो बच्चे थे बाबा के आसपास वो अनन्य बच्चे थे। लेकिन फिर भी न्यारा होने में कितना समय लगा, नहीं तो अंतिम समय में अंत मते सुगति कहते हैं, अंतिम समय में अगर कोई दूसरा याद आ जाए बाबा के बजाए, तो जिनसे विशेष स्नेह होता है वो तो याद आ ही सकते हैं, अपना लौकिक बेटा, अपना परिवार, कोई भी थे, बाबा के 5 बच्चे थे, सभी अपने अपने उसमें सेटल थे। लेकिन कितना सहज बाबा कर्मातीत हुए, ऐसे ही हमारी भी अंतिम स्थिति हो। ये पुरुषार्थ बहुत काल का होता है, हम लास्ट में सोचें कि हम ऐसा पुरुषार्थ कर लेंगे, लास्ट में हम सबसे न्यारे हो जाएंगे, लास्ट में हम सहज ही एक बाप दूसरा ना कोई इस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तो हो सकेंगे नहीं। अभी से वो हमारा अभ्यास होगा तब हम वो स्थिति अंत, जब भी हो, विनाश के समय हो या विनाश के पहले हो, विनाश के पहले भी अंत हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि विनाश ही, क्योंकि आज जीवन का कोई भरोसा नहीं है किसी के जीवन का भरोसा, कभी भी कुछ भी हो जाता है लाइफ में। और जिस घड़ी मेरी अंतिम घड़ी है, जैसे ब्रह्मा बाबा की अंतिम घड़ी आई कब, विनाश के पहले ही आई ना, विनाश तो अभी कितना लंबा समय, सतयुग की स्थापना में पूरे 100 वर्ष का संगम युग, हमारे सब महारथी गए, दादियां गई, समझो विनाश के पहले ही गए ना, लेकिन कर्मातीत स्थिति में गए तो संपूर्ण प्राप्ति। नंबर 1 बने बाबा, मम्मा, मम्मा तो बाबा से भी पहले गई लेकिन नंबर 1 में गए पुरुषार्थ में। तो यही हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए कि कभी भी हमारी अंतिम घड़ी आती है उस समय मेरी स्थिति में मुझे बाबा ही याद है, बाबा के अलावा कोई नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई वैभव नहीं। नहीं तो किसी किसी को खाने की चीजों से भी होता है ना, तो मरने के पहले वो चीजें याद आ जाती हैं कि वो नहीं मिला मुझे, इसीलिए प्राण अटक गए, कईयों के ऐसे प्राण अटकते। फिर तो बाबा का जो पुरुषार्थ रहा, इस पर भी है ना, गुलजार दादी ने एक बहुत अच्छी वो सुनाई थी किसी की स्टोरी, कोई बहन थी, मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप सभी आज आए हैं, थके हुए हैं, समय से सोएंगे, फिर अमृत वेले भी आपको आना है। तो कहने का भाव क्या है कि हमारे को बाबा ने बहुत सहज पुरुषार्थ का रास्ता बताया है, हर कदम में हमें बाबा को देखना है, कहीं भी हम मूंछते हैं, उलझते हैं, कोई प्रश्न मन में आते हैं, कोई परिस्थिति आती है, हमेशा देखो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया। बाबा भी गृहस्थी था, बाबा का भी परिवार था, बाबा ने भी उस परिवार में रहते हुए निर्णय लिए, अपने लौकिक परिवार वालों को भी बाबा ने छोड़ा नहीं, लेकिन उनका कल्याण किया, उनको भी बाबा का बनाया, जो बने वो बाबा के बने और नहीं बने, उनका बेटा नारायण दादा जिन्होंने अभी शरीर छोड़ा, नारायण दादा यज्ञ से गए और बाबा ने उनको बिजनेस करने के लिए अपने ईश्वरीय ट्रस्ट से कुछ भी नहीं दिया, उनको मदद की उनके रिश्तेदारों ने, फिर जो दूसरे रिश्तेदार बाहर रहते थे उसके आधार पर उन्होंने अपना बिजनेस किया। लेकिन बाबा ने जो है वो ऐसे नहीं, जैसे बाबा की हमारे प्रति भी श्रीमत है, हमें अपने परिवार को कोई छोड़ नहीं देना है, लेकिन उनकी सेवा अर्थ हम निमित्त हैं, भाव बदलना है, वो मेरे हैं ये भाव भी नहीं रखना है, लेकिन इनके कल्याण के लिए, इनकी सेवा के लिए मैं ट्रस्टी हूं, मैं निमित्त हूँ, बाबा ने मुझे बनाया है। तो जैसे बाबा ने पुरुषार्थ किया है वैसे ही हमें हर कदम पर पुरुषार्थ करते हुए बाबा के समान संपन्न और संपूर्ण जल्दी से जल्दी, क्योंकि समय अंतिम है, बहुत नजदीक है, तो जल्दी से जल्दी हम उस संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ओम शांति।